Jamnastami is such a major festival throughout India, fact that it's a national holiday, and millions of people will go to the temple on that day.
उसी तरीके से जैसे जन्माष्टमी जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, हर छुट्टी का दिन होता है और लोग जन्माष्टमी मनाते हैं.
So even by the so-called incarnations of God, so many thousands of people will come to hear.
तो ऐसा करें इतने भी भगवान के अवतार क्यों ना अपने आप को घोषित करते बोलते हैं, लेकिन हजारों लोग कृष्ण के विषय में उनसे कथा सुनते हैं.
So all of these examples indicate to us how much religion is still a part of life here in India.
तो इस सब उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि धर्म कैसे भारतीयों का एक जीवन का एक अंग है.
Of course, there are always threats. And there is always the ongoing influence of this age of Kali. In the Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva describes the influence of the age of Kali. Srila Vyasadeva has said that in the Kali Yuga, people will live a short life, and they will generally be lazy, they will be misguided, they will be unlucky, and they will be always disturbed.
तो श्री व्यासदेव ने कली के लोगों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया है. पहले वो कहते हैं कि उनकी आयु कम होगी, उनकी बुद्धिमंद होगी, उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, वो हमेशा चिंतित रहेंगे.
The fact that people are always disturbed can also be an impetus to help them to come to the temples and to inquire about the higher purpose of life.
हालांकि चिंता भौतिक चिंता एक प्रोत्साहन भी होती है अर्थात जीवन को स्वीकार करने के और जीवन के लक्ष्य को जानने के.
But we know the influence of the age of Kali is so strong and powerful that people become blinded by atheistic propaganda.
लेकिन कली का प्रभाव इतना तीव्र है कि जो नास्तिक प्रचार है उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं.
As the Kali Yuga progresses, there is a tendency for people to become godless. In other words, they do not have proper understanding of God because they're misguided by so many speculators, false propagandas.
और जैसे ही कली का युग आगे बढ़ेगा तो लोग ज्यादा नास्तिक बनते जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो भ्रमित हो रहे हैं जो दार्शनिक हैं और मनोविज्ञानी हैं उनके ज्ञान से हुआ
है. वो disregard the shastra, they don't make proper study of the scriptures anymore.
पर लोग शास्त्रों का अध्ययन सही तरीके से नहीं करेंगे तो ईश्वर को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा.
So they're familiar with Bollywood and all the movie stars, and they know all the cricketers and the famous batsmen and so on. But if you ask them about the main characters in Bhagavad Gita, they're not sure.
तो चाहे फिल्मिस्तान के फिल्म सितारे हों चाहे क्रिकेट के सितारे हों, उनके नाम, उनका एड्रेस, उनकी व्याख्या तो पूरी जानते होंगे, लेकिन ये पूछा जाए गीता में कौन कौन है.
So 500 years ago, Lord Krishna appears in this Kali Yuga to teach all of us the process for self-realization in this age.
भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले अवतरित होते हैं कि हम कलयुग में किस तरीके से धर्म का पालन करें.
श्री चैतन्य महाप्रभु इज डिस्क्राइब्ड एज महापदनाय अवतार, द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ऑल ऑफ द इंकार्नेशंस. Because he is distributing freely love of God.
और वो भगवान श्री कृष्ण कली में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित प्रेम का प्रकटन कर रहे हैं.
चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ गार्डनर. जस्ट एज अ गार्डनर गोज इनटू द फील्ड एंड दे विल सो द सीड्स. सो चैतन्य महाप्रभु इज लाइक अ गार्डनर हु सोज द सीड्स ऑफ लव ऑफ गॉड इन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन.
तो जिस तरीके से एक माली बगीचे में जाकर अलग अलग बीज आरोपण करता है, उसी तरीके से एक शिक्षक महाप्रभु एक माली के समान इस पूरे विश्व भर में भक्ति का बीज अलग अलग लोगों के हृदय में हो रहे हैं.
सो दीज सीड्स बिगिन टू ग्रो एंड इट प्रोड्यूस अ ट्री. व्हेन अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली इवेंचुअली वी होप वी विल गेट सम फ्रूट्स.
और ये भक्ति का बीज जब किसी को प्राप्त होता है उसमें पानी जल और धूप से सिंचन होता है तो पौधे में अंकुरण होता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से फल पैदा होता है.
चैतन्य महाप्रभु says, however, he said, I am only one person. How many fruits can I eat? There are so many trees and so many fruits. How many fruits can I eat?
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, मैं कितने पेड़ों में से कितने फल खा सकता हूँ.
चैतन्य महाप्रभु describes it is the duty of others to also take up this Krishna consciousness movement and to help him to taste these fruits and to distribute them to others.
तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम भी इस फलों को चखें और दूसरों को भी
चखाए. कृष्ण अर्जुन describes himself as having miserly weakness. The word for miser in the text is kripana. Kapanya dosho ahata svabhava. Arjuna is saying, because of my miserly weakness, I'm confused about my real principles of religion.
So Bhagavad Gita mein, Arjuna janai wa kripanya khandi, सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं और धर्म और धर्म के बीच में भेद नहीं कर पाते.
The opposite of kripana, the miserly person, is the brahmana, one who is generous, one who distributes whatever he has for others.
और कृपण के विपरीत में ब्राह्मण जो कि उदार हृदय का होता है और जो भी उसके पास प्राप्त होता है वो दूसरों को बांट देता है.
We all have the human form of life. It is very valuable. The human form of life, we have better facilities, better opportunities than all the other species.
तो हम सब को ये मनुष्य देह प्राप्त है जिसका विशेष सुविधा मिलती है और सभी योनियों से उत्कृष्ट है.
In the human form of life, we can inquire about life. We get education. Means we can read scriptures.
मनुष्य जीवन में हम धर्म जिज्ञासा कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं.
These opportunities are not given in the other forms of life.
ये अवसर दूसरे देह में दूसरे शरीरों में प्राप्त नहीं हो सकते.
So with these facilities, there's also responsibility.
और लेकिन इन सब अवसरों के साथ एक उत्तरदायित्व भी हमें निभाना पड़ता है.
जस्ट लाइक इन अ गवर्नमेंट ऑफिस द गवर्नमेंट वर्कर वो रिसीव सम फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटीज बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही मे बी गिवन अ होम, ही मे बी गिवन अ गुड सैलरी. इन दिस वे द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर हिम because of his responsibilities.
जैसे सरकारी दफ्तर में सरकारी अफसर और क्योंकि उसके अवसर को सुंदर दायित्व होते हैं तो उसको उसी प्रकार सुविधाएं भी प्राप्त होती है. सुंदर घर, सुंदर बंगला, मकान, गाड़ी.
In the same way, human beings have a responsibility.
उसी तरीके से जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है उनके ऊपर तो कुछ उत्तरदायित्व है.
That responsibility is to inquire about the purpose of life.
और उत्तरदायित्व क्या है कि हम जिज्ञासा की पूर्ति करें, किस जिज्ञासा की पूर्ति करें कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए.
And to guide us in our inquiry, in our search to understand these things, the scriptures are there.
और इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें शास्त्र प्राप्त है जिससे हमें ज्ञान ले सकते हैं.
Therefore, it is said, one should first of all develop his own life, perfect his own consciousness of God, and then distribute it for the benefit of others.
तो इससे कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने जीवन को सफल करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, और फिर दूसरों की सहायता करनी है.
Sri Chaitanya Mahaprabhu particularly gave this responsibility to those who were born in Bharat Vasa.
और खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उत्तरदायित्व भारत वासियों को दिया
है. भारत भूमि की हरियाणा मनुष्य जन्म जा. That it is very rare or fortunate for a person to give birth in the land of Bharat.
चैतन्य महाप्रभु कहते थे भारत भूमि का धैर्य मनुष्य जन्म जा, जिसका अर्थ ये है कि किसी को बहुत पुण्य और सौभाग्य के बाद ये भारत भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा.
जन्म सार्थक खरे खरा फल रूप का. One should understand the duties of human life and then one should teach that knowledge to others.
और उसको अगर ये मनुष्य जन्म भारत भूमि प्राप्त हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना जीवन को सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए.
In the human form of life, we have so much responsibility. And it begins when we inquire about the nature of the absolute truth. Without this inquiry, we do not follow it, we are not proper human beings.
तो मनुष्य जीवन का विशेष उत्तरदायित्व है कि जीवन के इस प्रश्न की जिज्ञासा की पूर्ति करना. और अगर हम जिज्ञासा की पूर्ति नहीं करते तो हमारा मनुष्य जीवन अभी शुरू नहीं हुआ.
It is described in Srimad Bhagavatam. Lord Krishna was one day with a cowherd boys in the forest of Braja, and the sun came very hot. So Lord Krishna and the cowherd boys, they took the shelter of the trees. And Lord Krishna described how these trees are very magnanimous, how they are giving service to others.
तो ऐसे एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में जिसमें भगवान श्री कृष्ण गांव और ग्वालों के साथ गायों को चरा रहे थे ब्रज में. तो कड़ी धूप होने के नाते वो एक वृक्ष की छाया के नीचे खड़े हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण वृक्ष पेड़ों का गुणगान करने लगे कि किस तरीके से निस्वार्थ रूप में ये पेड़ सबकी सेवा करते हैं.
Whatever the tree produces, it is there for the benefit of others. The leaves, the fruits, the wood, the bark, the sap, everything which is coming from the tree, it is allowed to be taken by others.
और भी वृक्ष कुछ भी अगर पैदा करता है तो वो दूसरों के हित के लिए होता है, जैसे उसके पत्ते हो, चाहे उसका फल हो, चाहे उसकी छाल हो, चाहे उसकी लकड़ी हो, चाहे उसमें से निकलने वाली गोद हो, ये सब दूसरों के हित के लिए, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल होता है.
So Lord Krishna says it's the duty of all living entities to serve other living entities with their life, their wealth, their intelligence, and their works.
उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने प्राणों से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से और अपने वचनों से.
The highest thing is to give your life for the service of others. Just like devotees in the Krishna consciousness movement, they surrender into the Krishna consciousness movement to dedicate their life to the service of mankind, to the distribution of Krishna consciousness.
तो इन चारों चीजों में से सबसे अच्छा तो ये है कि अपना जीवन ही दूसरों की सेवा के लिए दे सके. जैसे आप देखते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कितने भक्तों ने अपना जीवन दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया.
Then there are other persons who have some wealth by their good pious activities, maybe in previous lives they were born into a wealthy situation where they've acquired wealth, and they may utilize their wealth also to the service of others.
जो अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने पूर्व जन्म के पुण्य कारण उनका जन्म एक अच्छा धनाढ्य परिवार में हुआ है, और वो धन उनको एकत्रित है, वो धन की सेवा से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं.
Someone else may not have wealth, but they have some good intelligence, so they can use their intelligence also for the service, how to help others.
जो ना जीवन नहीं दे सकते तो वर्धा दे सकते हैं, अगर वो धन भी नहीं दे सकते तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किस तरीके से कृष्ण भक्ति का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसमें सहयोग कर सकते हैं.
And somebody, and others may feel they're not very intelligent, they may not feel qualified, they may simply use their words to help or to praise others.
और जो अपनी बुद्धि भी लगा सकता तो कम से कम अपनी वाणी का इस्तेमाल करके दूसरों को कृष्ण की ओर मोड़ सकता है.
This is civilized society where one living entity is trying to help to do good for others. However, what is actually good for others? There are two words. One word is Shreyas and the other is Prayas. Prayas means what we think is good, and Shreyas means what is ultimately good.
So, हम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से. एक कहते हैं श्रेयस और एक कहते हैं प्रेयस. प्रेयस मतलब जो देखने में अच्छा लगता है, जिसका परिणाम तुरंत मिलता है, उसको प्रेयस बोलते हैं.
Young children, for example, they don't like to go to school. They feel very happy just to play in the streets, to play cricket or football all day. They're very happy. They tell their parents, I don't want to go to school. I don't need to support the school. But the parents understand the higher purpose of education.
जैसे बच्चे हैं तो शिक्षा प्राप्त करने नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता माता वो जानते हैं कि स्कूल में जाकर उन्हीं का भलाई है.
So something which is for our immediate benefit may not be good for us in the long run.
तो जिससे हमें तुरंत सुख की प्राप्ति हो रही है, जरूरी नहीं है कि लंबे समय के लिए वो सहायक हो.
We may think some situation is very good for us today, but in the ultimate, but later on in life, we may regret it.
So हो सकता है अभी वो तुरंत कुछ लाभ दे रहा हो, लेकिन पूरे जीवन में लंबे समय के बाद वो कुछ नुकसान.
And the same way, we should also think about the next life. Not only this life, but the future life also is very important. We should consider what kind of birth do we want to take in the next life.
तो उसी तरीके से ना सिर्फ हमें इस जीवन के प्रति सतर्क रहना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए अपना अगला जीवन कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं.
The way we live our life today will determine the type of birth we're going to take in the future.
जिस तरीके से मैं अभी वर्तमान जीवन जी रहा हूँ वो ये निर्धारित करता है कैसे मेरा भविष्य मेरा जीवन होगा.
So those who are only interested in the prayers, they're only thinking of the immediate benefit. And we see a lot of people like that. They simply work hard to get money, and they think the goal of life is economic development.
तो प्रेयर का मतलब तुरंत सुख देने वाला, लेकिन लंबे समय में हानिकारक हो. तो अधिकांश लोग इस प्रेयर से सुख के लिए करते हैं, और उनका वो प्रेयर सुख क्या है कि ज्यादा धन प्राप्त करें, धन एकत्रित करें.
We are thinking that I get money, I'll be happy, I will enjoy, I can go and purchase all these things from the big stores, and I will satisfy my senses. this way I will enjoy life.
तो लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा धन एकत्रित करूं और धन से कुछ भोग करूं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूं, मॉल में जाऊं, मन चीजें खरीदूं इत्यादि.
But that enjoyment is that enjoyment which we get from making some money and spending it, that enjoyment is very limited, it's temporary, it's certainly it's finished with the body.
और इस प्रकार का भौतिक सुख एक तो बहुत सीमित होता है और वांछनीय होता है और जीवन के अंत के बाद सब खत्म हो जाता है.
Those who are more concerned with Shreyas will think more about the next birth, not only this life, but also the next life. And they will be concerned with working for the higher benefit.
और जो श्रेयस के प्रति चिंतित हैं वो ना सिर्फ इस जीवन के पर अगले जीवन के भी इस रूप में बनाने की प्रयास करें.
The activities, the consciousness which we have today will reflect in our consciousness in the future.
पर जो कार्य अभी चेतना आज हम कैसे कर रहे हैं वो ही हमारा आगे जाकर चेतना तोड़ना चाहिए.
Now we have a human body, but if in the next life we become an animal or a tree, it is not a great credit.
अगर हो सकता है आज हमारा मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो लेकिन अगर अगला जन्म जानवर या पशु का हो तो ये कोई अच्छी बात है.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu is appealing to everyone, to all of us, to help him in distributing this message of Krishna consciousness.
श्री चैतन्य महाप्रभु सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी को आदेश दे रहे हैं तो सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश का जोरों शोरों को प्रचार.
It's a very big task. There are many fruits and there are many living entities, many souls who need to be given the fruit of Krishna consciousness.
तो बहुत सारे फल हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फल हमें देना है कृष्ण भक्ति का.
We need to learn how to satisfy Lord Krishna. By satisfying Lord Krishna, then everyone can be satisfied.
तो हमें देखना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कैसे करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करके हर कोई संतुष्ट हो सकता है.
You don't have to be a rich person. Chaitanya Mahaprabhu said, I have no wealth, I'm simply a gardener. I just have some fruit and flowers.
आपको धनी होने की आवश्यकता नहीं है. श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे मैं कोई धनी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई उसे एक माली हूँ जिसके पास कुछ फल और कुछ फूल है.
But these fruits and flowers are enough to satisfy Lord Krishna if they're offered with the proper motive of devotion.
लेकिन ये छोटे से फूल और छोटे से फल पर्याप्त है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर वो प्रेम से और भक्ति से अर्पित किए जाए.
Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, if you offer me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, then I will accept it.
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अगर आप प्रेम से और भक्ति से जल, पानी, फूल ये सब चीज मुझे अर्पित करें तो मैं स्वीकार करता हूँ.
We may wonder, is there really any benefit in me doing these offerings to Krishna?
हो सकता है कोई सोचे क्या इसमें कोई लाभ है अगर भगवान श्री कृष्ण को ये सब चीजें अर्पित करें.
We should understand that these offerings are not made for our benefit, and Krishna also, he doesn't need our offerings because he has many goddesses of fortune all serving him. So our fruit and flowers are not greatly important to him, but he does value our devotion.
तो भगवान श्री कृष्ण को हमारे फल या फूल नहीं चाहिए क्योंकि हजार वर्षों की सेवा में लगी है. वो हमसे फल और फूल की आकांक्षा नहीं करते, उसके पीछे जो प्रेम है और जो भक्ति है वो उठाते
हैं. When we make an offering of love and devotion to Lord Krishna, then so many others also benefit. The example is given how one time Durvasa Muni had come to the home of the Pandavas. And Mother Draupadi had a pot with which she could feed all of her guests, so long as she had not taken her food. But when they came there that day, she had already taken her meal.
तो एक ऐसी घटना आती है जिससे हम इसी समझते हैं कैसे मां श्री विष्णु को संतुष्ट करके सभी जगत संतुष्ट हो सकता है। जैसे एक बार एक दुर्वासा मुनि पांडवों के घर आते हैं और वो जब पांडव घर आते हैं तो द्रौपदी माता के पास एक ऐसा पात्र होता है जितना हर्ष पात्र होता है जो उत्तर ही खाना बना सकता है जितने की आवश्यक हो तब तक जब तक माता द्रौपदी उसके को खाना ना खाए।
Draupadi was thinking, what could she do? Because if Durvasa came with all of his disciples, if they could not satisfy her, then Durvasa Muni would curse her as well as the Pandavas. So it's a very dangerous situation.
दुर्वासा मुनि उस समय को पहुंचे थे जब माता द्रौपदी खा चुकी थी और अक्षय पात्र को नया खाना नहीं बना सकता था। और अगर दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को खाने से संतुष्ट ना किया जाए तो श्राप पांडवों को दे सकते थे जिससे जो उनकी मृत्यु हो सकती।
So Draupadi was appealing to Krishna, what to do? So Krishna said, look in your pot, is there anything there in your pot? And there was only some leaf of the sap, some little bit leaf of the vegetable was remaining there in the pot. And Lord Krishna said, yes, offer it to me. And Krishna accepted it.
So Mother Draupadi hrake, so Krishna ko yaad kar liye, aur maa Bhagwan Shri Krishna ka bhakt hue. To unhone aisi vividha se ki apni badhai, Bhagwan Shri Krishna ne kaha, kya kuch dana ya kuch saag bacha hai? To dekha kuch patra mein chhota sa चावल का दाना था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया और भगवान श्री कृष्ण को सेवन किया।
एंड व्हेन कृष्णा एक्सेप्टेड दैट लिटिल पीस ऑफ वेजिटेबल ऑफर्ड बाय द्रौपदी ही बिकेम सैटिस्फाइड बिकॉज शी हैड ऑफर्ड इट विद प्योर लव एंड डिवोशन। एंड व्हेन कृष्णा बिकेम सैटिस्फाइड दुर्वासा मुनि एंड ऑल ऑफ हिज 60,000 डिसिपल्स they also became satisfied.
तो भगवान श्री कृष्ण ने जब छोटे से दाने को स्वीकार किया तो वह संतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि माता द्रौपदी ने बहुत प्रेम और भक्ति से अर्पित किया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए तो दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्य भी एक बारी में संतुष्ट हुए।
So this is a very nice example for all of us to understand how powerful it is. If we worship Krishna and we satisfy Lord Krishna, then thousands and thousands of others can also be satisfied.
तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर दें तो अपने आप जितने भी लोग हैं वो संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे।
तो शिव प्रभुपाद again this Krishna consciousness movement and has this wonderful center here in Punjabi Bagh to allow all of you the opportunity to take up Krishna consciousness.
तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो मैं इस कृष्णा भावना अमृत आंदोलन में इसी पंजाबी बाग सेंटर की स्थापना की है जिसमें आप सब आकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
It is your duty as being born in this land of Bhagavatams, it is your duty to take up this Krishna consciousness message and to practice it yourself.
तो क्योंकि आप सब लोगों का भारत में जन्म हुआ है तो आप सबका ये कर्तव्य है कि आप इस कृष्ण भावनामृत का फायदा उठाकर कृष्ण भक्ति में लगे और अपने जीवन को सार्थक करें।
Become Krishna conscious yourself and then distribute it to others because there are so many more people who don't have the knowledge of Krishna consciousness but they need it badly.
तब खुद कृष्ण भावना प्राप्त हो और दूसरों को भी कृष्ण भावना का प्रचार करें क्योंकि उनको इस ज्ञान की आवश्यकता है।
without having Krishna consciousness, that we do not know what our destination will be in the next life. It's a very dangerous situation.
बिना कृष्ण भावना के हम नहीं बता सकते कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा और निश्चित रूप से बिना कृष्ण की भक्ति के और भी डरावना हो.
But for one who is Krishna conscious, Lord Krishna says in Bhagavad Gita that Padiham Punarjanma Naiti Mamiti Sorjana. That when he gives up this body, he never takes birth again in this material world. He goes back to the supreme destination.
Bhagavan Sri Krishna Bhagavad Gita mein kehte hain ki jo Bhagavan Sri Krishna ki bhakti karta hai, jo unka ashray leta hai, tatva deham punarjanma naiti mamiti sorjana. To jaise wo deh जाएगा उसको दोबारा शरीर ना प्राप्त होगा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त होगा.
ह्यूमन लाइफ वेरी स्पेशल 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ एंड ओनली 4 लाख स्पीसीज आर ह्यूमन सो दिस इज द रेयर टू हैव द ह्यूमन बॉडी.
ये जो मनुष्य देह है ये बहुत ही विशेष है. 84 लाख योनियों में सिर्फ 4 लाख योनियां मनुष्य देह की.
And it's even more rare to have association with devotees. Because in the association of devotees, one can cross over the ocean of material
existence.
Now we may be questioning, well, this material world is not so bad. I am having a nice time here in this Delhi city, big city. But just look at the dangers and the problems in this material world.
So, who can say that? If you are from Delhi, sir, you are from here. But you are from Ashwala. But if you see the world, see the circumstances, how dangerous.
Right now, there's a bit of a storm blowing outside. Maybe another dust storm. We just had a very bad dust storm a week or two ago. Seems like another one is coming. It's a very dangerous situation. All of these problems come in the material world. Can anyone solve it? Can the politicians do anything to stop it? Can the military, the army, the defense, can they do anything to stop it? They are powerless against the will of God.
जैसे अनेकों खतरों में से एक खतरा तो आप हार देख रहे हैं कि ऐसे घमासा आंधी आ रही है. कुछ ही दिनों पहले एक आंधी आई थी और ना जाना कि आंधी कितना नुकसान करके जाएगी. और इसके सामने चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कितने भी कर्मचारी हो, उनकी शक्ति प्रकृति की शक्ति के साथ में कुछ भी नहीं.
अल्टीमेट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड द सुप्रीम लॉर्ड एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू प्लीज हिम. दिस इज द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस.
तो सबसे ऊंचा सिद्धांत कृष्णा भावना मॉडल में है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना सीखना चाहिए.
God is a person. Just as all of you here today are persons, you're all individual souls. In the same way, God is also a person. And He has feelings. He has needs. We have to recognize Him as a personality and understand His needs.
So, ये समझने वाली बात है कि भगवान एक व्यक्ति है, जैसे आपका व्यक्ति है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के व्यक्ति है. उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं. और कृष्ण भक्ति का मतलब है कि उन भावनाओं और जरूरतों को समझना और उस अनुसार कार्य करना.
He wants us to approach him with loving devotion. He does not want us to simply run to him when we are in need, but he wants pure loving devotion.
भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं कि वो हमारा प्रेमय भक्ति प्रेमय सेवा चाहते हैं और हमसे कुछ नहीं चाहते.
Just like you may be a parent and you have a child and your child always, if your child comes to you and said, are you going to feed me today? or can you give me this, can you give me that, all the time you come and say, give me, give me, give me, then you become a little tired of just simply giving, giving, giving. We want to have more loving
relationships. और हर बार वो आपसे कुछ मांगता है कि पिता जी मुझे ये दीजिए, माता जी मुझे ये दीजिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसी सेवा कीजिए, ऐसे दीजिए, हर बार जब आपसे मांगेगा तो आप शायद कुछ देर के बाद जो है उदास हो रहे हैं, कुछ देर के बाद जो है मायूस हो रहे हैं, कुछ देर के बाद हताश हो रहे हैं. आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चों का संबंध हो प्रेम ही आदान प्रदान का. In the same way, God is a person. We have to understand how to please Him. Just as we are pleased with pure loving devotion, the Lord also wants that real loving reciprocation from us. And this can be awakened through the practice of Krishna consciousness. So, उसी प्रकार कृष्ण परम पिता होने के नाते हमसे वो प्रेम चाहते हैं, हमसे प्रेम में सेवा चाहते हैं. वो ही उनके संतुष्टि का कारण है. और वो प्रेम में सेवा क्या है? कृष्ण भक्ति के नियमों का पालन करना.
This Krishna consciousness process begins with the chanting of the holy name as taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. The chanting of the holy name is one way in which we can awaken our consciousness of God.
और भगवान की हम प्रेम में सेवा कैसे कर सकते हैं? वो सेवा शुरू होती है भगवान के नामों का जप करते हैं. जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो ना सिर्फ हम भगवान की सेवा करते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक सुशुभ प्रेम है वो भी जाग जाता है.
We have to understand the problems of material life, that there is for all of us, that is old, there is old age, disease and death. And these are not very pleasant things.
तो हमें इस संसार के खतरों को, इस संसार की परेशानियों को जानना है. और वो परेशानी क्या है? मृत्यु, वो परेशानी है बुढ़ापा, वो परेशानी है बीमारी, वो परेशानी है बार बार जन्म.
But we can cultivate our consciousness of God, then we can get free of these miseries of material life. We can transfer ourselves to the spiritual world, where there is no old age, no disease, and no death.
और अगर हम पूर्ण रूप से कृष्णा भावना वाले हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अनुसार हो जाए, तो हम सब मिलकर मृत्यु से, बुढ़ापे से, बीमारी से, जन्म से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं.
These things are inevitable for everyone in this world. We don't like them, but we are forced to accept them.
और ये सब चीजें सबको सहनी पड़ती है, इससे कोई छूट नहीं सकता, चाहे चाहे या ना चाहे.
But the cure, the solution to these miseries is given, that we can free ourselves from these different miseries by cultivating our spiritual consciousness.
तो हम सब इन परेशानियों से छूट सकते हैं. और सर क्या उपाय है? कि हम कृष्णा भावना भावित होना सीखें.
And to help us to chant Hare Krishna mantra with more feeling, there should also be some other different activities, such as hearing from scriptures like Bhagavad Gita. It's very helpful.
और हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जब प्रेम पूर्वक कर पाए, भावना से कर पाए, तो हमें जब के साथ साथ कुछ और भक्ति कर्मों को भी स्वीकार करना चाहिए, जिसमें खास कर हैं शास्त्रों को सुनना, पढ़ना, सीखना. Now in 2 days we will begin पुरुषोत्तम मास. हम करीबन 2 ही दिनों में पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है.
Purushottam mass is considered, actually it's very inauspicious month for any kind of material activities.
हालांकि पुरुषोत्तम मास को मल मास कहा गया है, भौतिक चीजों के लिए ये बहुत ही अशुभ महीना माना जाता है.
Usually no marriage is performed during that month.
खासकर इस मास में कोई विवाह नहीं होता.
Not an auspicious time for this kind of endeavor.
ऐसे कार्यों के लिए शुभ समय नहीं होगा. But पुरुषोत्तम मास इज
a very good time for all kinds of spiritual activities. So we encourage you to take up, to make a vow for this Purushottam Mass, that you can come every day to the temple, and you can chant the Hare Krishna mantra with all the devotees, and you can do some seva here in the service of Krishna. Lekin Purushottam Mass adhyatma jeevan mein bahut zaruri hai. तो आप सब एक तरह कह सकते हैं कि इस आने वाले पुरुषोत्तम मास में आप मंदिर आ सकते हैं, भक्तों के साथ जप कर सकते हैं, भक्तों के साथ मिलकर कोई ना कोई मंदिर की सेवा ले सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इंक्रीज योर डिवोशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ कृष्णा. तो ये बहुत अच्छा समय है जिसमें आप अपनी भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ज्ञान को, आप श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं. फॉर वन मंथ थिंक अबाउट दैट एवरी डे आई एम गोइंग टू कम टू द टेंपल एंड आई एम गोइंग टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र. हाउ मेनी व्हाट मेबी यू आर चैंटिंग वन और टू राउंड्स, सो ओके आई एम गोइंग टू चैंट फाइव और सिक्स राउंड्स और एट राउंड्स. आई एम गोइंग टू चैंट मोर देन आई यूजुअली चैंट. आई एम गोइंग टू डू मोर सर्विस देन आई यूजुअली डू बिकॉज़ आई वांट टू इंक्रीज my service for Krishna. तो आप यह अनुमान कर सकते हैं कि मैं मंदिर आऊंगा, और अगर आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं तो क्या अनुमान कर सकते हैं, मैं पांच से सात माला करूंगा या और अपनी माला को बढ़ाऊंगा और भगवान की और सेवा लूंगा. तो if we increase our service to Krishna, you will see how your life becomes auspicious and how the situation of the world can even be changed. If even a small percentage of the world will become more Krishna conscious. अगर इस महीने में अपनी कृष्ण भावना को या कृष्ण भक्ति को बढ़ाते हैं तो गुरु संसार में परिवर्तन कर सकता है. अगर संसार के कुछ ही लोग अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस. दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस बिकॉज दिस इज कली युगा. Because we're the most unintelligent, we're the most lazy. So the Lord Krishna is very kind. He gives us a very powerful, very quick and easy process. We have to take advantage. और खुली मत, ये जो उपाय है सबसे आसान है, क्योंकि कौन सा युग है? कली का युग है, जिसमें हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, मतलब आज ही है. तो इसलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हमें सबसे अच्छा उपाय उपचार दिया है. तो वी टेक एडवांटेज. कृष्ण सेज भागवत गीता नेहापि ब्रह्मचर्योऽस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वभावम् अप्येष्यतात्मशः जायते मातोपया. A little advancement on this path can save us from the greatest danger. The danger is now we have the human life. But we do not know what kind of birth will take in the future if we do not take full advantage to do some nice spiritual activities. So, this is what Krishna Bhagavad Gita is saying. Inaya Vikam Nashwasti Prada Vijan Vidyate Swar Pabhis Pumasya Jaya Jamal Toh Vaya Kiram Puri Sri Vajrashti Ki Mukti Yati Ko Svikar Hona. So, what birth is the birth of the birth of the birth of the birth of the हमारी रक्षा कर सकते हैं. और बड़े से बड़ा उदाहरण क्या है कि हमारा अगर जीवन जो कि निंद्र योनि में जाने से बच सकता है. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू मेक सम वाउस फॉर पुरुषोत्तम मास टू डू मोर चैंटिंग? तो आप सब इसे हाथ खड़ा करके बताइए कि इस आने वाले पुरुषोत्तम मास में आप लोगों की विशेष व्रत सब लेंगे. जो जो विशेष व्रत लेंगे, चाहे वो नाम दर बढ़ाने का, मंदिर में आने का, सेवा बढ़ाने का, वो अपने हाथ पूरे ऊपर करें. यू नॉट अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ओके आई एम गोइंग टू बी अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन फॉर पुरुषोत्तम मास. मेबी यू ईट अनियन एंड गार्लिक यूजुअली. ओके, पुरुषोत्तम मास आई वोंट ईट अनियन एंड गार्लिक एनीमोर. तो बात करें, हो सकता है कि आप सख्ती से शाकाहारी का पालन न करते हो. पुरुषोत्तम मास में आप ये व्रत ले सकते हैं कि हम शाकाहारी बना रहेंगे. याद कर, हो सकता है शाकाहारी हो लेकिन क्या खाते हो, लेकिन पुरुषोत्तम मास
मैं मर्यादा और लज्जत का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा.
Sometimes I smoke cigarettes. Okay, no, I won't smoke anything. It's nothing in spiritual to mind.
या फिर अगर आप छुटके छुटके पीड़ित पूछते हो तो पुरुषोत्तम मास्टर आप पीड़ित नहीं
पिएंगे. Sometimes we drink tea, coffee. Okay, I want to stop drinking tea, coffee for पुरुषोत्तम
मास्टर. और अगर आप चाय पीते हो कम से कम दिन में 25 कप, कॉफी पीते हो 50 कप, पुरुषोत्तम मास्टर हम दोनों के लिए छोड़ देंगे.
Want to do something, want to give up these things which are not related to Krishna.
So, we in this month, whatever Krishna bhakti is related to, we will drop it
and accept what is for Krishna, the chanting of His holy name, the worship of Krishna.
Or, the bhakti Krishna ke bhakti ke anukool cheeze hain, manasi Krishna ka jap, manasi Krishna ki bhakti, usko swikar karenge.
तो किसी का प्रश्न है तो अपना हाथ उठा सकते हैं.
Natural life on the planet Earth.
conditioners, without motor cars. There was civilization on the planet for millions of years, and even peacefully, without these things. Therefore, there was no problem for the global warming.
जैसे हम देखते हैं कि हजारों लाखों सालों से लोग बिना गाड़ियों के, बिना ऐसे कारखानों के बहुत ही सरल जीवन हजारों सालों से जीते आए हैं. उस समय ऐसी परेशानियां जो है वो उत्पन्न नहीं हुई थी जैसे ग्लोबल
वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन, वी कट डाउन द फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, वी आर सिंपली वेस्टिंग द लैंड बिल्डिंग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस सो मेनी material commodities for our sense gratification.
और जो वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, किस उद्देश्य से कि वहां पर जो है वो कारखाने खोले, क्यों? भौतिक सुविधाओं को बनाने के लिए, उनको भोगने के
लिए. We should live according to the Ishabhasya principle, as it is described in the Ishopanishad. Ishabhasya vidyam sarvam yad kincha jagat jam jagat Everything animate and inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should accept, therefore, only those things which are necessary for himself and should not accept more, knowing well to whom they belong.
तो इस सभी समस्याओं का एक बहुत ही सरल उत्तर क्या है? ईश अवश्य सर्वम का जो सिद्धांत है. और वो सिद्धांत क्या है कि आप इस संसार की हर चीज जाने जो कृष्ण की है, हमारी भूमि है, हम उन सब चीजों में से उतने ही इस्तेमाल करें जितनी हमारी आवश्यकता है.
So the idea, don't take more than what you need, just be satisfied with what's enough. We have to conquer over our greed. Bhagavad Gita described three gates to hell: lust, anger, and greed.
तो ये सब पैदा होता है लोभ से. हमें उसका नियंत्रण करना सीखना चाहिए. और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं नर्क के तीन द्वार हैं: लोभ, क्रोध और काम.
Every saint person should do their best to avoid these things. It's a very infectious thing that we become greedy for more. Somebody's got more than us, I want to get more. We have this greedy mentality, and this keeps us in the material world. We have to conquer over that greed by controlling the senses.
और हमें इस लोभ की प्रवृत्ति का दमन करना, जिससे हम ज्यादा भौतिक सुविधाएं के प्रति कामों को देने लोभी होते हैं, जिससे हम संसार में बंधे रहते हैं. और इस लोभ का हमें दमन करना है, हमें इस लोभ का संयम करना.
तो कृष्ण कॉन्शियसनेस टीचिंग अस हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस, हाउ टू बी सैटिस्फाइड, हाउ टू लिव सिंपली and not to be greedy to get more all the time.
So we want to Krishna Bhagavad Gita mein sikhate hain kaise apne indriyon ka daman kare, kaise hum har paristhiti mein santushta na sikhe Krishna.
So actually so that Krishna consciousness can solve all the problems of the world.
Ye vakya pur roop se satya hai ki Krishna prarthana se इस दुनिया के सभी परेशानियों को सुलझा सकता
है. ओनली स्केर्सिटी इन द वर्ल्ड इज कृष्ण कॉन्शियस.
शेर बाबा जी कहते थे इस संसार में अगर किसी चीज की कमी है तो एक ही चीज की कमी, किस चीज की? कृष्ण भावना होती.
सो वी नीड ऑल ऑफ योर हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस टू एवरीवन.
तो हमें आप सब प्रत्येक भक्ति यहाँ पर जो बैठने की आवश्यकता है इस कृष्ण भावना के ज्ञान के प्रचार करने के.
विद ऑल ऑफ योर हेल्प देन द सिचुएशन कैन बी चेंज.
और आप सब के सहयोग से इस दुनिया की परिस्थिति को हम बदल सकते हैं.
ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.
राजा भक्त का धन्यवाद. हरे कृष्ण. तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके महाराज का धन्यवाद करें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप सबको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर शिक्षा खत्म नहीं हुई है कि कल